परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी है, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
हे प्रभु यीशु तुमको प्रणाम, गाते हैं हम वंदन गान।
हे प्रभु यीशु तुमको प्रणाम, गाते
प्रेमित्र प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और अपने परिवार और मित्रों के साथ आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से जकरयाह की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। आज मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जकरयाह की पुस्तक से आज हमारे लिए यह अंतिम अध्याय होगा जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें फिर से यह अवसर दिया है कि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। जकरयाह की पुस्तक से अध्ययन आरंभ करने में आपने हम सबों की सहायता की और आज जब हम इस पुस्तक का अंतिम अध्ययन करते हैं तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं अपने जीवन में ग्रहण कर सकें, उसके अनुसार चलने पाएं, हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, बुरे संगति से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से अपने लोगों की रक्षा करें। पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा हम सब से आप बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आज हम जकरयाह की पुस्तक उसके 14 अध्याय अर्थात अंतिम अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। जकरयाह इसराइल को चिता रहा है कि यहोवा के दिन अर्थात महाक्लेश में ऐसा होगा कि इसराइलियों को लूटा जाएगा, उनकी स्त्रियों को भ्रष्ट किया जाएगा और उनके आधे लोग बंधुआई में अर्थात गुलामी में जाएंगे। उस समय परमेश्वर उनकी ओर से युद्ध करेगा अर्थात प्रभु यीशु आएगा और सब पवित्र जन उसके साथ होंगे। वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा और जैतून का पर्वत फटकर दो भाग हो जाएगा। यहूदी इस खड से होकर भाग जाएंगे और पेत्रा नगर में शरण लेंगे। तो आइए हम अपने अध्ययन में और आगे बढ़ेंगे और जकरयाह की पुस्तक 14 अध्याय उसके 6 और 7 पद को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, उस दिन कुछ उजियाला ना रहेगा क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। ना तो दिन होगा और ना रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। मेरे प्रियो, उस समय प्रकाश में परिवर्तन आएगा। हम प्रभु राज्य के स्थापना हेतु प्रभु यीशु के आगमन की भोर की ओर अग्रसर हैं। यह यहोवा के दिन का एक निश्चित संदर्भ है। यहोवा का दिन 24 घंटे का दिन नहीं होगा। अब हम इस पृथ्वी पर इसराइल राज्य की स्थापना को देखेंगे। जकरयाह की पुस्तक 14 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। पूरब के ताल अर्थात मृत सागर और पश्चिम के समुद्र अर्थात भूमध्य सागर, यरूशलेम में पानी का सोता फूट निकलेगा। यरूशलेम जो भीतरी भूभाग है वह उस समय समुद्री मार्ग होगा अर्थात बंदरगाह बन जाएगा। यदि आप इसे आत्मिक जल कहें तो वह भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जकरयाह कहता है कि व्याख्या अर्थात परमेश्वर का वचन यरूशलेम से प्रसारित होगा। परंतु जकर्या वास्तविक प्राकृतिक पानी के विषय में कह रहा है। वहां पर एक व्यवस्था जो परमेश्वर दे रहा है। जकर्या की पुस्तक 14 अध्याय के 9 पद में आगे लिखा है, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। मेरे मित्रों, यह धर्मशास्त्र का एक और अत्यधिक अनुपम अंश है। इसमें यहोवा के दिन और प्रभु यीशु के राजा होने की भविष्यवाणी की गई है। उस युग में एक प्रभु और एक ही भाषा होगी। मैं चाहता हूं कि आपके लिए सपन्या की पुस्तक 3 अध्याय उसके 9 पद को पढ़कर सुनाऊं। लिखा है, उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाएं और उसकी सेवा करें। मेरे प्रियो, हम इस भाषा के विषय निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं। परमेश्वर ने भाषाओं में अनेकता उत्पन्न करके मनुष्यों के मध्य विभाजन किया था। भाषा की बाधा से बढ़कर मनुष्यों के मध्य कोई दूसरी दीवार नहीं है। इस प्रकार परमेश्वर मनुष्यों को तीतर बीतर करने में सफल हुआ और उद्धारकर्ता के आने की व्यवस्था की। आज सुसमाचार संपूर्ण संसार में इन भाषाओं में पहुंच रहा है। यह एक और चिन्ह है जो अंत समय की ओर हमारे यात्रा को प्रकट करता है। उस समय एक भाषा होगी। मैं इस बात से अत्यधिक प्रसन्न हूं। भाषा चाहे कोई भी या कोई सी भी क्यों ना हो, सब मनुष्य एक ही भाषा बोलेंगे और समझेंगे। जकर्या के पुस्तक 14 अध्याय के 10 पद में लिखा है, गेवा से लेकर यरूशलेम के दक्षिण की ओर के रिमोन तक सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी, परंतु वह ऊंची होकर बिन्यामिन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हननेल के गुम्मट से लेकर राजा के दाखरस कुंडों तक अपने स्थान में बसेगी। यह पद अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अब हम जो देख रहे हैं वह वास्तव में उपसंहार है। यह हमें पुस्तक के अंत में लाता है। लिखा है, सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी। अराबा उस घाटी का भौगोलिक नाम है जो गलील सागर से चलकर यर्दन की घाटी, मृतक सागर, अकाबा की खाड़ी और उत्तरी अफ्रीका तक पहुंचती है। इसे महान घाटी कहते हैं। इसका आरंभ लेबानोन में बेरूत के उत्तरी तट में कुत्ता नदी से होता है। जकर्या के कहने का अर्थ है कि यह घाटी जो बनेगी वह अराबा के समान बहुत बड़ी होगी। यह घाटी गेबा से लेकर यरूशलेम के दक्षिणी की ओर से रिमोन तक फैली होगी। यह यहूदा के गोत्र का पर्वतीय प्रदेश तथा दक्षिण में शमोन के गोत्र के क्षेत्र की सीमा तक का क्षेत्र होगा, अर्थात बिन्यामिन के गेबा उत्तर में से रिमोन तक। रिमोन यरूशलेम के दक्षिणी पश्चिम में 45 किलोमीटर दूर है। यह एक बहुत बड़ी घाटी होगी और यरूशलेम के आसपास के पठार सब समतल हो जाएंगे। मेरे प्रियो, इससे स्पष्ट होता है कि यरूशलेम उभर आएगा, वह ऊंची होकर आएगा। लिखा है, परंतु वह ऊंची होकर बिन्यामिन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हननेल के गुम्मट से लेकर राजा के दाखरस कुंडों तक अपने स्थान में बसेगी। कभी किसी टीकाकार ने कहा था कि यह वास्तविक नहीं है, या यूं कहें कि वास्तविक नहीं हो तो हननेल का गुम्मट क्या है। कई टीकाकार इसी प्रकार से कहते हैं और एक टीकाकार कहता है कि यह वास्तविक नहीं हो सकता क्योंकि हननेल का गुम्मट है ही नहीं। परंतु पुरातत्व विभाग ने इस गुम्मट को खोज लिया है। अब इस भाई को कोई और व्याख्या नहीं करनी होगी। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं जकरिया के पुस्तक 14 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, लोग उसमें बसेंगे क्योंकि फिर सत्यानाश का शाप न होगा और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। यरूशलेम के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि उन्हें निवास करने के लिए एक सुरक्षित स्थान मिलेगा। आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं है। यरूशलेम एक इस संपूर्ण जगत का एक अति असुरक्षित स्थान रहा है। जब प्रभु यीशु आ जाएगा और अपना राज्य स्थापित कर देगा और जैतून पर्वत के साथ अनेक भौगोलिक परिवर्तन आएंगे, तब मनुष्य यरूशलेम में सुरक्षित वास करेंगे। दूसरे शब्दों में पहली बार शांति आएगी। जकरिया 14 उसके 12 में लिखा हुआ है, जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। लिखा है कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के शत्रु जीते जी मर जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहा गया है कि ऐसा महाक्लेश के समय में होगा। लिखा है उनकी आंखें उनके गोलकों में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। यह एक अत्यधिक भयानक दशा होगी। जकरिया 14 के 13 पद में आगे लिखा है, उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। यरूशलेम का शत्रु के हाथों में पड़ने का कारण आंतरिक अव्यवस्था होगी। जकरिया 14 के 15 पद में लिखा है, और घोड़े खच्चर ऊंट और गधे वरन जितने पशु उनकी छावनियों में होंगे वे भी ऐसी ही बीमारी से मारे जाएंगे। यरूशलेम विश्व व्यापार का केंद्र होगा। भविष्यवाणियों में लिखा है कि जैसे वे मूसा के युग में मिस्र से बहुत संपत्ति लूट कर लाए थे, उसी प्रकार जब वे पुनः स्वदेश लौटेंगे तब बहुत धन संपत्ति लेकर आएंगे। यह तब की घटना होगी जब परमेश्वर उन्हें स्वदेश लाएगा। मेरे प्रियो, अब प्रभु राज की स्थापना और उसका वर्णन है। प्रभु यीशु पृथ्वी पर संपूर्ण अधर्म और विद्रोह का दमन करेगा। जकरिया की पुस्तक 14 अध्याय के 16 पद में लिखा है, तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे वे प्रति वर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। इस पद का अर्थ है कि इसराइल का शेष भाग ही नहीं, अन्य जातियों का शेष भाग भी महाक्लेश से बचेगा। ये सब लोग प्रभु राज में प्रवेश करेंगे। लिखा है, तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे वे प्रति वर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। वे यरूशलेम की ओर जाएंगे। उस समय महान परिवर्तन होगा। भौगोलिक, आत्मिक, आर्थिक वरन जीवन के हर परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन आएगा। और यही नहीं, प्रभु राज में परमेश्वर की गवाही की रीति भी बदल जाएगी। प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8 पद में लिखा है, यरूशलेम से लेकर पृथ्वी की छोर तक हम उसके गवाह हों। परंतु यहां लिखा है कि सब जातियां यहोवा को दंडवत करने यरूशलेम आएंगी। प्रभु यीशु के मृत्यु से पूर्व भी ऐसा ही होता था, परंतु पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने कहा था कि हम पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार को पहुंचाएं। मेरे मित्रों, वे प्रति वर्ष राजा यहोवा को दंडवत करने तथा झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए आएंगे। झोपड़ियों का पर्व इसराइली मिस्र से निकलने के बाद प्रतिवर्ष मनाते थे। उस समय वे यह पर्व इसलिए मनाएंगे कि वे पृथ्वी के कोने कोने से निकालकर यरूशलेम लाए गए हैं। जकर्याह की पुस्तक 14 अध्याय के 17 पद में लिखा है, और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे, उनके यहां वर्षा न होगी। ध्यान दीजिए, अब कोई कहेगा मैं तो सोचता था कि यह प्रभु राज है। जी हां, परंतु प्रभु राज भी परखने का समय होगा। वह शेष रहे मनुष्य जो संख्या में बहुत होंगे परखे जाएंगे। कलीसिया में भी तो अनेक सदस्य हैं, परंतु वे सब विश्वासी नहीं हैं। अतः यह 1000 वर्ष का समय परखने का समय होगा। जकर्याह 14 उसके 18 और 19 पद में लिखा है, यदि मिस्र का कुल वहां न आए तो क्या उन पर वह मरी न पड़ेगी, जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए न जाएंगे। यह मिस्र का और उन सब जातियों का पाप ठहरेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे। मेरे प्रियो, यह मिस्र का एक उदाहरण है। तब हम आगे पढ़ते हैं, जकर्याह 14 उसके 20 पद में लिखा है, उस दिन घोड़ों की घंटियां पर भी यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिए पवित्र, और यहोवा के भवन की हांडियां उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेंगी जो वेदी के सामने रहते हैं। लिखा है उस दिन। जकर्याह इस अभिव्यक्ति से चूकता नहीं है, उस दिन घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा होगा, यहोवा के लिए पवित्र, घोड़े के लगाम भी यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी। इसका क्या अर्थ है? सब कुछ परमेश्वर की सेवा के लिए होगा। मंदिर के पात्र पवित्र क्यों कहलाते थे? क्या वे अति आकर्षक थे? मेरे विचार में 40 वर्ष जंगल में भटकने के बाद तो आराधना के ये पात्र टेढ़े मेढ़े हो गए होंगे, परंतु वे पवित्र इसलिए कहलाते थे कि वे परमेश्वर के लिए काम में लिए जाते थे। उस युग में सब कुछ परमेश्वर की सेवा के काम में आएगा। लिखा है, और यहोवा के भवन की हंडियां उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेंगी जो वेदी के सामने रहते हैं। मेरे प्रियो, उस समय सब कुछ परमेश्वर की सेवा के लिए होगा। आज जो कुछ भी है वह परमेश्वर की सेवा में उसके काम में नहीं आता है, परंतु उस दिन सब कुछ परमेश्वर की सेवा के लिए होगा। जकर्याह के पुस्तक 14 अध्याय उसके 21 पद में हम पढ़ते हैं, जो इस पुस्तक का और इस अध्याय का अंतिम पद है। लिखा है, वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हांडियां सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेंगी, और सब मेल बलि करने वाले आ आकर उन हांडियों में मांस पकाया करेंगे। तब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी ना पाया जाएगा। लिखा है, वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हांडियां सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेंगी। मेरे प्रियो, आपकी रसोई के बर्तन भी परमेश्वर को समर्पित होंगे। लिखा है, और सब मेल बलि करने वाले आ आकर उनमें मांस पकाया करेंगे। क्या उस समय भी बलि चढ़ाई जाएगी? हम यहेजकेल नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं कि उस समय भी बलि चढ़ाई जाएगी। उस समय बलियां प्रभु यीशु की मृत्यु के स्मरण में होगी, जैसे पूर्व काल में बलियां प्रभु यीशु की भावी मृत्यु को स्मरण करने के लिए होती थी। यहां लिखा है, तब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी ना पाया जाएगा, अर्थात सब ढोंगी नाश हो जाएंगे, प्रत्येक अविश्वासी नाश होगा। तब परमेश्वर की सेवा में केवल वही मनुष्य होंगे जो उसके होंगे। मेरे मित्रों, यह प्रभु राज होगा। यह कैसा महिमामय चित्रण है! यह जकर्याह की भविष्यवाणियों का महान उपसंहार है। मेरे प्रियो, हम सबों को इन बातों को जानना क्या ही अद्भुत है कि हमारा प्रभु फिर से इस पृथ्वी पर आएगा और फिर से वह हम सब के जीवन में अपनी शांति और आनंद देगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और इसी के साथ इस पुस्तक के अध्ययन को भी हम समाप्त करते हैं। मेरे मित्रों, मुझे आशा है नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि जकर्याह नबी की पुस्तक के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आप समय निकालें और अवश्य ही इस पुस्तक को पढ़ें। निश्चय जाने कि परमेश्वर आपके साथ अपने वचन से बातचीत करना चाहता है। प्रभु इस अध्ययन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दिया, हम उसको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।